प्रियल को पूरी रात नींद नहीं आई। उसे सुबह होने का इंतजार था ताकि वो अर्जुन और सिम से बात करके उन्हें ये समझा सके कि वे दोनों निक के आगे उसकी हेल्थ इश्यूज की बात ना करें। संडे होने के कारण दोनों बच्चे अभी भी निक के साथ सो रहे थे। प्रियल बोली, ये तीनों तो कितने आराम से सो रहे हैं और मुझे टेंशन से पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात ना सो पाने की वजह से सिर भी दर्द से फट रहा है। उसने घड़ी में टाइम देखा, अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं। अर्जुन को भी लेट तक सोने की आदत है, लेकिन सिम उठ चुकी होगी। उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती हूँ। प्रियल उठकर वहां से बाहर की तरफ जाने लगी, तभी उसकी नज़र निक, नील और नीयू पर पड़ी। प्रियल ने निक के गाल पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय लव। इन तीनों के होते हुए मुझे रात को नींद आ भी कैसे सकती थी, कैसे फेल कर सो रहे हैं तीनों। प्रियल मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आई। वो अर्जुन के कमरे की तरफ बढ़ने लगी कि तभी पीछे से साधना जी ने उसे आवाज दी। साधना जी बोली, प्रियल हुआ क्या, इतनी सुबह कैसे उठ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रात को तुम चारों ठीक से एडजस्ट हो तो गए थे ना? प्रियल बोली, हाँ आंटी, आजकल सुबह जल्दी उठने की आदत है ना, तो उठ गई थी। आंटी, अर्जुन और सिम कब तक उठेंगे? साधना जी ने पूछा। ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी सुबह उनकी याद आने लगी? वैसे अभी तो कुछ दिनों तक तुम्हारा उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। प्रियल हैरान हुई। क्या? साधना जी ने कहा, अरे उन दोनों को अचानक से किसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए लंदन जाना पड़ा। दोनों के करियर के लिए जरूरी भी था तो मैंने भी मना नहीं किया। वे वापस आने में शायद 6-7 महीने का समय लगा देंगे। प्रियल सोचते हुए बोली, थैंक गॉड अर्जुन और सिम 6 महीने के लिए बाहर चले गए। इस बीच निक इन दोनों के टच में नहीं रहेगा तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी उन दोनों के अलावा मेरी प्रेगनेंसी इश्यूज के बारे में और कोई नहीं जानता। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें उनसे क्या काम था? प्रियल बोली, नहीं आंटी, ऐसा कोई खास काम नहीं था। वो आज संडे है तो मैंने सोचा सब साथ में कहीं घूमने चलें। प्रियल साधना जी से बात करके वापस अपने कमरे में आ चुकी थी। थोड़ी दिनों के लिए ही सही, लेकिन स्ट्रेस तो कम हुआ। अब इस सिरदर्द का क्या करूं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये तो सोने पर ही रुकेगा। वो बेड की तरफ देखकर बोली, इन तीनों को देखकर लग नहीं रहा कि मुझे ये यहाँ पर सोने देंगे। ये निक के बच्चे उनके जैसे ही होंगे। आई विश कि मेरा थर्ड बेबी बिल्कुल मेरे जैसा हो। हाँ, लेकिन उसकी आँख भी नीली होनी चाहिए। निक की आंख खुल चुकी थी। वो बेड पर लेटे हुए आंख बंद करके प्रियल की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। निक ने सोचते हुए कहा, इसका बस चले तो दुनिया के हर एक इंसान की आंख नीली कर दे। हाँ प्रियल, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा थर्ड बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो और उसकी आंख तो नीली बिल्कुल भी ना हो। क्या हो जो मेरा थर्ड बेबी बिल्कुल निक के जैसा हो, जो बात बात पर चिल्लाए और एनी टाइम दूसरों पर गुस्सा करता रहे? निक ने प्रियल को पीछे से गले लगाया। अच्छा, तो मैं बात बात पर चिल्लाता हूँ और बेवजह दूसरों पर गुस्सा करता हूँ? प्रियल बोली, नहीं हाँ मतलब कभी कभी। आप छुपकर मेरी बातें सुन रहे थे? निक ने कहा, नहीं तो मैं तो यहीं सामने था। अच्छा बताओ, सुबह सुबह मूड क्यों ऑफ है? प्रियल मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि आप तीनों ने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। पूरी जगह तो आप तीनों ने कवर कर ली थी, मेरे लिए जगह ही नहीं थी। अब तो जगह कवर करने के लिए चौथा भी आने वाला है, फिर तुम कहाँ सोओगी प्रियल? निक प्रियल को जानबूझकर परेशान कर रहा था, जबकि वो उसकी बात सुनकर रोने लगी। प्रियल रोते हुए बोली, आप तो वैसे भी मुझे टाइम नहीं देते थे। अब एक और बेबी आ जाएगा तो आप मुझे भूल जाओगे ना? वैसे प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स इतने भी बुरे नहीं होते। प्रियल, मैं मजाक कर रहा था। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें परेशान करता रहता हूँ। इसमें रोने जैसा कुछ नहीं था। चलो छोड़ो इन सबको, थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। निक बेड से नीचे आ गया ताकि प्रियल वहां आराम से सो सके। निक की नज़र पास सो रहे नील और नीयू पर पड़ी तो उसने उन दोनों के माथे पर किस किया। प्रियल ने मुंह बनाया, मैं रह गई। मैंने कहा था ना, मेरे लिए 4 बच्चे संभालना बहुत मुश्किल होगा। निक ने प्रियल के होठों पर किस किया। अच्छा अब चुपचाप सो जाओ, आज संडे है तो हम हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते। एंड डोंट वरी, मैं नील और नीयू को संभाल लूंगा। प्रियल के सोने के बाद निक ने नील और नीयू को जगाकर उन्हें रेडी किया और ब्रेकफास्ट कराने के लिए बाहर लेकर गया। बाहर डाइनिंग टेबल पर साधना जी, करण और आरोही थे। निक ने सबको कहा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वो टेबल पर बैठा। अर्जुन और सिम कहाँ हैं? साधना जी बोली, प्रियल ने तुम्हें बताया नहीं कि अर्जुन और सिम सेमिनार के लिए लंदन गए हैं? अगले 6 महीने तक शायद वहीं पर रहेंगे। आरोही ने कहा, प्रियल को उन दोनों से क्या काम था? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, थोड़ी थकी हुई तो लग रही थी। मैंने उसे पूछा भी था, उसने कहा कि वो ठीक है। अगर सच में उसकी तबीयत खराब है तो उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे मम्मी जी, आप उसकी इतनी फिक्र मत कीजिए। अब तो ये समझ लीजिए कि पूरे 9 महीने हॉस्पिटल के चक्कर लगते ही रहेंगे। वो हमारी प्रियल प्रेग्नेंट है। आरोही बोलते बोलते रुक गई क्योंकि उसकी नज़र नील और नीयू पर पड़ी जो कि उसी की तरफ देख रहे थे। साधना जी आरोही की अधूरी बात का मतलब भी समझ चुकी थी और वो हैरानी से निक की तरफ देख रही थी। साधना जी अचंभित हुई, लेकिन कैसे? प्रियल ने तो सर्जरी, निक ने कहा, इसी वजह से हम चंडीगढ़ गए थे और उस डॉक्टर से भी मिले जिसने उसकी सर्जरी की थी। उसने हमें बताया कि किसी वजह से वो उस टाइम सर्जरी नहीं कर पाया था और
आगे तो आपको सब पता ही है। मैं कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर उसका प्रॉपर चेकअप करवा लेता हूँ ताकि पता चल जाए कि सब ठीक तो है ना। लास्ट टाइम मैं यहाँ नहीं था तो मुझे नहीं पता तब प्रियल को क्या हेल्थ इश्यूज रहे होंगे। वैसे लास्ट टाइम के प्रियल के रिपोर्ट्स तो होंगे ही ना, करण बोला। लास्ट टाइम प्रियल को सिम ने देखा था, मेरे हिसाब से सब कुछ उसके पास होना चाहिए। आप फिर से चेकअप करवा लो, इट वुड बी बेटर, निक ने कहा। हाँ, लेकिन शुरुआती समय में पता नहीं चलता। अगर केस हिस्ट्री होती तो पता चल सकता था कि प्रियल को किन चीजों से एलर्जी है या कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, न्यू ने पूछा। मम्मा को कुछ हुआ है क्या, साधना जी ने कहा। बच्चे, वो तुम्हारी मम्मा है, बड़ों को नाम से नहीं बुलाते। पता नहीं सर्जुन ने बच्चों को क्या क्या सिखा रखा है, निक मुस्कुराया। कोई बात नहीं आंटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये दोनों प्रियल को मम्मा बुलाते हैं, आरोही बुदबुदाते हुए। हाँ अच्छा, क्यों नहीं लगेगा, खुद भी तो सारे दिन प्रियल प्रियल की रट लगा कर रखते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद निक नील और न्यू को लेकर बाहर घूमने चला गया। प्रियल शाम तक सो रही थी। उसके उठने के बाद निक उन सबके साथ अपने घर पर वापस आ गया, जहां वे दोनों बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे कि नील और न्यू को आने वाले बेबी के बारे में कैसे बताया जाए। निक ने कहा, तुम्हें लगता है प्रियल बच्चे आने वाले बेबी को एक्सेप्ट कर पाएंगे? प्रियल बोली, पता नहीं, आपके बच्चे आपकी ही तरह हैं, तो आप खुद सोचिए, अगर आपकी मम्मा के आपके अलावा दूसरा बेबी आने वाला होता तो आप उसे एक्सेप्ट कर पाते? हाँ बिल्कुल, मैंने जेन को एक्सेप्ट किया था ना, वो भी बिना कोई ड्रामा किए। मेरे हिसाब से दोनों बच्चों को खुशी होना चाहिए, लेकिन उनका हक बनता है कि वो इस खुशी के बारे में जाने। प्रियल ने गहरी सांस ली। चलो नील और नियो को सब कुछ बताते हैं, आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा। प्रियल निक के साथ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए नील और नियो के पास गई। वे दोनों बाहर बैठकर गेम खेल रहे थे।
नील बोला, आज आप दोनों साथ में कैसे, आज तो आप दोनों झगड़ा भी नहीं कर रहे। निक ने कहा, हम दोनों क्या हमेशा झगड़ा करते रहते हैं? न्यू बोली, हाँ अक्सर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं और नील भी तो झगड़ते हैं। प्रियल धीरे से बोली, कितनी अच्छी गुड न्यूज़ बताने आए थे और ये दोनों हैं कि हमारे झगड़ों के बारे में बात करने लग गए। निक ने दोनों बच्चों के पास बैठकर कहा, अच्छा न्यू, उस दिन जब प्रियल और आरोही मासी छोटे बेबी के आने की बात कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लगा? न्यू बोली, लेकिन पापा वो बेबी तो आरोही मासी की होगी ना, उस दिन जीनी आंटी आई थी, उनके पास मेरे भी तो बेबी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे लेकर वापस भी चली गई। नील बोला, मुझे उस बेबी के साथ और भी खेलना था, लेकिन वो आंटी वापस आई ही नहीं। निक ने कहा, क्योंकि उन लोगों को वापस यूएसए जाना पड़ा। वैसे तुम दोनों को एक छोटू बेबी चाहिए क्या, जो हमेशा तुम्हारे पास रहे और जिसके साथ तुम दोनों खेल सको? प्रियल धीरे से बोली, कितनी अच्छी गुड न्यूज़ बताने आए थे और ये दोनों हैं कि हमारे झगड़ों के बारे में बात करने लग गए। निक इरिटेट हुआ, प्रियल या तो अपनी बातों को मन में बोला करो या इतना धीरे कि पास वाले को सुनाई ना दे। न्यू बोली, हाँ छोटे बेबी अच्छे तो लगते हैं। निक ने न्यू को गोद में बिठाया, ऐसा समझ लो हमारे घर पर भी एक छोटा बेबी आने वाला है। नील ने पूछा, क्या वो आंटी हमारे घर पर रहने के लिए आ रही है? निक ने कहा, वो तो यहाँ नहीं आ पाएगी, कभी हम ही उनके यहाँ चलेंगे। उसने सोचा, ओ माई गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। मतलब बड़ों को तो हम सीधे सीधे बोलकर बता भी सकते हैं, लेकिन इन्हें कैसे बताऊं कि प्रियल प्रेग्नेंट है और जल्द ही इनके एक और भाई या बहन इस दुनिया में आने वाला है। प्रियल बोली, मेरे सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि प्रियल मैं सब संभाल लूँगा, अब क्या हुआ? चलो साइड हटिए। उसने नील को गोद में बिठाया, बच्चों तुम दोनों के पापा बस कहते हैं कि वो सब संभाल लेंगे, बाकी कुछ चीज़ उनसे बिल्कुल नहीं संभलती। नील, न्यू, बच्चों याद है एक बार हम तुम्हारे फ्रेंड ज्ञान के घर एक पार्टी में गए थे? नील बोला, हाँ मम्मा, ज्ञान की छोटी बहन हुई थी तो उसके आने की खुशी में सेलिब्रेशन पार्टी थी। न्यू बोली, उनके घर फिर से पार्टी में जाना है? प्रियल बोली, बच्चा इस बार पार्टी वो नहीं हम देंगे, मतलब अभी नहीं, कुछ महीनों बाद। हमारे घर में भी एक छोटू बेबी आने वाला है। न्यू ने कहा, बेबी सिर्फ हमारा होगा ना मम्मा, हम लोग जितना चाहें उसके साथ खेल सकेंगे ना? निक ने कहा, हाँ, और वो हर घड़ी मेरे पास रहेगा। प्रियल बोली, लेकिन हो सकता है तुम दोनों को उसके साथ खेलने के लिए अपने पापा से झगड़ा करना पड़े। सोचो कितना अच्छा होगा ना, तुम दोनों का एक छोटा भाई या बहन और होगा। नील बोला, फिर वो मेरी सारी बात मानेगा। प्रियल बोली, इसे तो बस अपने पापा की तरह सबसे अपनी बात मनवाने की आदत है। न्यू ने कहा, और बड़े होने के बाद वो हमारे साथ स्कूल में जाएगा? निक ने कहा, हाँ सब करेगा, लेकिन उसके लिए हमें प्रियल का बहुत ख्याल रखना होगा, तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों इसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। नील ने पूछा, तो फिर हम उसे लाने कब जा रहे हैं? न्यू बोली, ओके प्रॉमिस, हम ना तो बेबी को और ना ही प्रियल को परेशान करेंगे। ओके पापा, फिर हम कल ही बेबी को घर लाने के लिए चलते हैं। प्रियल और निक दोनों एक साथ बोले, अरे नहीं, अभी इसमें टाइम है। नील और न्यू बोले, ओके, जब उसे लाने में टाइम है तो आप हमें अभी क्यों बता रहे हो? निक ने हंसते हुए कहा, हाँ शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी बता दिया।
प्रियल बोली, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों से अपनी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही थी। पता नहीं आने वाले 8 महीने कैसे निकालेंगे। आई विश मेरे पास एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन होती जिससे मैं वक्त को आगे निकाल लेता। निक और प्रियल ने बच्चों को सब कुछ बता दिया था। दोनों बच्चे भी इस नए मेहमान के आने से बहुत खुश थे, तो वहीं निक से तो अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। रात को दोनों बच्चों को सुलाकर निक ने कहा, प्रियल मैं। निक ने कहा, प्रियल मैंने बोला तो दिया कि मैं काम और तुम्हें दोनों को संभाल लूंगा, लेकिन प्लीज कहीं कोई कमी रह जाए तो बता देना। पता नहीं क्यों अब मिशन ब्रेकआउट करने का मन नहीं कर रहा। प्रियल बोली, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस इस मिशन पर ध्यान दीजिए, यही मेरे लिए काफी होगा। नील और न्यू बहुत समझदार हैं, उन्हें संभालना मुश्किल ज्यादा काम नहीं है। बाकी ये तो अभी आया भी नहीं है, इसकी क्या टेंशन लेनी। निक, वैसे हमने अभी तक सबको बताया नहीं है, पता नहीं सब कैसे रिएक्ट करेंगे। निक, आप बेवजह परेशान हो रहे हो। निक ने कहा, प्रियल मुझे काम के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ सकता है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना परी को तुम यहाँ बुला लो। प्रियांशु की भी इन दिनों इंस्टीट्यूट में छुट्टियां चल रही होंगी, वो भी आ जाएगा तो तुम्हारा मन अच्छे से लग जाएगा। वैसे तो अंकित और ऐश्वर्या का घर भी पास ही है, लेकिन वो दोनों भी अपने काम में बिजी रहते हैं। अब आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, इन सबको छोड़िए, मैं सबको अपने हिसाब से बता दूंगी। हम सारी रिपोर्ट करवाने के बाद ही सबको बताएंगे। निक प्रियल के करीब आया, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। कोलकाता में जब मुझे पता चला कि तुमने सर्जरी करवा ली, तो मैं अंदर से बहुत टूट गया था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाल तो लिया, लेकिन यहाँ आकर जब नील और न्यू से मिला तो ऐसा लगा कि शायद अब मेरी लाइफ में किसी और खुशी की जगह ही नहीं है। पर अब इस बेबी का आना, ओ माई गॉड, जो 5 साल में मैंने नील और न्यू की लाइफ के मिस कर दिए थे, वो इस बेबी के साथ मैं अच्छे से बिताऊंगा। मैंने तो सब कुछ सोच लिया है कि ये मिशन कंप्लीट होने के बाद हम वापस यूएसए चलेंगे। बेबी पैदा होने के बाद तुम चाहो तो फिर से जॉब कर सकती हो, लेकिन मैं तो बस अपने परिवार को संभालूंगा या अपने बच्चों को। अरे वाह, आपने तो अच्छी खासी प्लानिंग कर रखी है। अब ये मत कहिएगा कि तीनों बच्चों की शादी के बाद 4 धाम की यात्रा पर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, मैं तो अपने नील और न्यू के बच्चों के साथ उनकी इस प्यारी सी दादी को परेशान करूंगा। एक बात कन्फर्म है, हम सब लोग तुम्हें गुड़िया ही बुलाएंगे। निक की बात सुनकर प्रियल हंसने लगी। दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बात करने के बाद एक दूसरे की बाहों में सो गए। जहां निक अभी तक प्रियल के हेल्थ इश्यू से अनजान था, तो वहीं अंदर ही अंदर प्रियल को खुद की और होने वाले बच्चे की फिक्र सता रही थी।